ओम शांति। तो आज का हमारा विषय है मत्स्य अवतार और मनु महाराज, और इसकी प्रेरणा मिली पिछले संडे की अव्यक्त मुरली से। 12/6/22 जो पिछला संडे था, उस मुरली में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मुरलियां क्या हो रही हैं, रिवाइज हो रही है, तो भले वो 12/6/22 को हमने सुनी, परंतु उस मुरली की जो ओरिजिनल डेट थी वो क्या थी, 3/4/91, 3 अप्रैल 1991। और 1991 में हमारा ओम शांति भवन तो रेडी था, तो मुरली वहाँ चली है। और ओम शांति भवन बनने से पहले मेडिटेशन हॉल में चलती थी, और ये बनने से पहले हिस्ट्री हॉल में चलती थी। तो जैसे जैसे बाबा का ज्ञान विश्व में फैलता जाता है, बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो हिस्ट्री हॉल में बाबा के बच्चे पहले समा जाते थे, संख्या बढ़ने के कारण वो छोटा पड़ गया, तो मेडिटेशन हॉल बना। फिर संख्या बढ़ गई तो ये छोटा बन गया, तो ओम शांति भवन बना। और उस भवन में जब बाबा ने ये मुरली चलाई, तो उस समय पूरा भवन ओम शांति भवन फुल था। न सिर्फ फुल था, लेकिन कुछ ब्राह्मण बच्चे रह गए जिन्हें सीट ही नहीं मिली अंदर, तो फिर उन्हें मेडिटेशन हॉल में और हिस्ट्री हॉल में बैठकर वो मुरली सुननी पड़ी। तो बेशक बाबा को वो सभा बहुत बड़ी दिख रही थी, क्योंकि पैक होके बैठे होंगे ना सभी। तो बाबा ने उस महफिल को देखकर क्या कहा, विशाल महफिल है। और उस महफिल को देखकर बाबा को शास्त्रों का यादगार याद आ गया, कि शास्त्रों में जो आपका यादगार है गायन है। तो क्या बताया गायन क्या है, जो पहले ग्लास भर पानी में डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, फिर तालाब से नदी में डाला, आखिर कहाँ जाएगा, तो कहा सागर में। और बाबा ने कंपेयर किया कि पहले हिस्ट्री हॉल, फिर मेडिटेशन हॉल, और अब क्योंकि उस समय वो मुरली चल रही थी, तो बाबा ने कहा अब यहाँ चल रही है मुरली, और आगे फिर कहाँ होगी। उस समय बाबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कैसे वो हॉल भी छोटा पड़ गया, और अभी हम डायमंड हॉल में मुरली सुनते हैं। और डायमंड हॉल भी छोटा है, जो कई भाई बहने बाहर बगीचे में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, गेट पे बैठ बैठ कर, कॉरिडोर पर बैठ बैठ कर मुरलियां सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य, बाबा ने शास्त्रों के मत्स्य अवतार का उल्लेख किया। तो थोड़ा सा मत्स्य अवतार और मनु महाराज का क्या कनेक्शन है उसको समझ लेते हैं, कहानी और फिर उसका आध्यात्मिक अर्थ। तो कहानी ऐसी आती है कि एक राजा है जो अपने लौकिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने लौकिक पद प्रतिष्ठा, अपने लौकिक धन संपत्ति उपलब्धियां सब छोड़कर, मतलब पूरा करने के बाद तपस्या का मन बना लिया। और उस राजा का नाम था सत्यव्रत। बहुत उदार दिल भी था और तप करने आ गया। और तप कहाँ करने आया, तो कहा कृत माला नदी के किनारे। कौन सी नदी, कृत माला नदी के किनारे। तो जब नदी में स्नान कर रहा था, स्नान हो गया और उसके बाद तर्पण करना था, तो अंजलि में जल उठाया। और जब अंजलि में जल उठाया तो देखा उसमें क्या है, छोटी सी मछली है, लेकिन मछली का डिस्क्रिप्शन क्या है? छोटी सी है और सुनहरे रंग की है, गोल्डन कलर की है, सोने जैसा उसका रंग है। और वो उस मछली को जल में वापस डालने वाले थे नदी में, तो मछली रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आप इस में वापस मत डालिए। क्यों क्यों नहीं डालिए? क्योंकि इसमें और भी बड़े बड़े जीव जंतु हैं जिससे मेरी सुरक्षा खतरे में है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सुरक्षा के लिए मुझे अपने पास कहीं जल में डालो, इसमें नहीं डालो। और उसके रिक्वेस्ट पर उसको दया आई और करुणा के अवश उन्होंने उनका जो कमंडल पानी से भरा था उसमें उसको डाल दिया। और फिर देखा कि धीरे धीरे रात भर में कमंडल में जो स्थान मिला है मछली को, वो मछली तो उससे बड़ी हो गई है और फिर रिक्वेस्ट कर रही है कि ये स्थान मेरे लिए कष्टप्रद है, मैं यहाँ पे ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा स्थान दीजिए। तो उसमें आता है कि पहले कमंडलू में डाला है, फिर कुंड माना कुंभ माना घड़े में डाला है, फिर कुंड के बाद कुएं में डाला है, और उसके बाद कहा कि कुंभ के बाद कुंड नहीं, बाबा कहते हैं तपस्या कुंड बना, कुंड थोड़ा बड़ा होता है ना, कुंभ से कुंड, फिर कुआं वो और बड़ा, फिर और बड़ा कहा तो झील सरोवर, और उसके बाद बड़ा तो सरिता माना नदी और बड़ा माना समुद्र। तो हर बार उसका साइज बढ़ जाता है और हर बार उसकी रिक्वेस्ट रहती है कि मेरा आकार जो है वो बढ़ गया है और इस कारण से मेरा यहाँ रहना सुविधाजनक नहीं है, मेरी मूवमेंट ठीक से नहीं हो पा रही है, मैं ठीक से मूवमेंट कर सकूं, सुखपूर्वक रह सकूं, इसलिए बड़े वाले स्थान में मुझे स्थान दीजिए। और ऐसी हर बार की रिक्वेस्ट पर वो राजा क्या करते हैं, उसको चेंज करते जाते हैं। और आखिर भी नदी से भी जब बढ़ गया तो नदी के बाद सबसे बड़ा जल को धारण करने वाला स्थान तो एक समुन्दर ही रह जाता है, तो समुन्दर में डाल दिया। अब समुन्दर को भी पूरा क्या कर लिया, नाप लिया, वहां पे भी बहुत बड़ा आकार हो गया। और तब इस राजा सत्यव्रत को लगता है ये कोई मामूली चीज नहीं है, और तब अब वो उसको रिक्वेस्ट करते, अब तक तो मछली रिक्वेस्ट करती है क्योंकि मछली फिर कहती है कि इधर भी मुझे नहीं रखो, तब वो कहता है कि बड़े विस्मय के साथ कि मेरी बुद्धि को विस्मित कर डालने वाली हे मछली, तुम वास्तव में हो कौन? साधारण मछली ऐसा नहीं कर सकती है, और मुझे तो नो डाउट पूरा विश्वास है आप कोई परमात्मा शक्ति है, क्योंकि परमात्मा शक्ति के बिना कोई इतने जल्दी इतना बड़ा आकार नहीं ले सकता है चमत्कारी रूप से, तो मुझे तो लगता है कि आप कोई परमात्मा शक्ति है, परमात्मा ही है। और तब मछली अपने और उसको रिक्वेस्ट किया तो आप अपने असली स्वरूप में आइए, और वो अपने असली स्वरूप में आते नारायण भगवान के रूप में, और फिर उनको पूछते हैं कि आप इस रूप में आखिर क्यों प्रगटे हैं, परमात्मा कितनी ऊंची शक्ति है, और मत्स्य तो क्या कहेंगे, एक इंद्रिय वाला जीव कहा जाता है पानी में जलचर, तो उस माना निम्न कोटि की कही जाती है, और इतनी ऊंची हस्ती इतने निम्न कोटि में आने का आखिर भी क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? तो क्या कहा उसने, क्या कहा उसने, क्या उद्देश्य बताया, उद्देश्य बताया कि इस संसार को जो अज्ञान के अंधकार से भर चुका है, जहां चारों ओर पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया है, वहां से अज्ञान को मिटा देना है, अधर्म को मिटा देना है, पाप को मिटा देना है, और वहां किसको स्थापित करना है? सद्ज्ञान को स्थापित करना है। तो ये उद्देश्य बताया और साथ में फिर निर्देश दिए कि आज से ठीक सातवें दिन इस संसार में महाप्रलयकारी बाढ़ आएगी, या क्यों कहे कि जल प्रलय आएगी, कि जिसमें समुन्दर का पानी उफान पर होगा, भयानक वृष्टि होगी और पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। और ऐसी जब स्थिति बन रही होगी तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए वहां पर एक सुदृढ़ नाव आके पहुंचेगी मेरी प्रेरणा से, और तुम क्या करना, अपनी सुरक्षा हेतु उस नाव में सवार हो जाना। लेकिन वो सातवां दिन आए तब तक तुम क्या करो, क्योंकि उस नाव में तुम्हें सप्तऋषि के साथ चढ़ना है, उस नाव में तुम्हें औषधियों के साथ चढ़ना है, उस नाव में तुम्हें बीजों के साथ चढ़ना है। तो सातवां दिन जब तक आए तब तक आप इसका क्या करो, इंतजाम करो। और वो इंतजाम करता है क्योंकि किनारे पे तो वो तप करने बैठा ही है। और फिर क्या होता है, वो सातवां दिन आता है और जैसे मत्स्य भगवान ने कहा, मत्स्य नारायण ने कहा कि देखते ही देखते सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, और उसने देखा कि सीन वैसा ही है। और फिर उनका ये भी था कि नाव आके पहुंचेगी, वो नाव भी आ गई। तो वो जो निर्देशन उसको स्मृति में आया उसके अनुसार सप्तऋषियों के साथ, बीजों के साथ, औषधियों के साथ उस पे सवार तो हुए, लेकिन पहले ही उसने वार्तालाप कर लिया था कि जब इतना चारों तरफ जल प्रलय होगा, जहाँ सब तरफ पृथ्वी में पानी ही पानी होगा, और वो नैया तो क्योंकि जल की तरंगे जो उठेगी, समुद्र जो उफान करेगा, तो नैया तो उसमें डोलेगी और चारों तरफ तो अंधकार होगा, तो उस अंधकार में प्रकाश कहाँ से आएगा जो मैं देख भी पाऊंगा। और फिर वो तो इतनी डोलेगी, नाव तो उसमें डोलेगी, तो उस डोलायमान नाव में बैठूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा ना, और चलो न भी डूबूं तो आखिर उसको नाव को किस दिशा में लेकर जाना होगा मुझे, क्योंकि सब तरफ तो पानी ही पानी होगा, आखिर ठिकाना कौन सा होगा मेरा। तो तब उसने कहा था, उस समय मैं भी आकर प्रकट हो जाऊंगा पुनः मत्स्य भगवान के रूप में, और उस समय मुझ माना मत्स्य के ऊपर क्या होगा, एक कांटा होगा, एक सिंह होगा, और आप क्या करना, ये मत्स्य और ये नाव, इन दोनों को जोड़ना होगा, और उसके लिए क्या यूज करना, वासु की नाग रूपी रस्सी, दो छोर हो गए ना, इन दोनों को जोड़ना है तो जो रस्सी चाहिए वो एक नाव को बांधेगी और एक मत्स्य को, और मत्स्य क्या हो जाएगा, जैसे कि नाविक जो नाव चलाता है, हम बोलते हैं ना भक्ति में, मेरे जीवन की नैया तेरे हवाले, है ना, तो वो नैया का खिवैया है, तो वो खिवैया लेके जाएगा सेफ्टी, क्योंकि जब नाव चल रही होती है पानी में तो हम चूंकि अभ्यस्त नहीं होते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन अगर हमें पूरा विश्वास होता है कि जो नाव का खिवैया है वो एक्सपर्ट है, तो उस निश्चय के बल पे वो नाव भले ही कितनी भी क्यों नहीं डोले, लेकिन हम बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, करते हैं ना, और जिसको नहीं कहते नौका विहार का आनंद लेते हैं। तो मैं उसको खिवैया बनकर उस जल प्रलय के समय सुरक्षित स्थान पर लेके जाऊंगा और तुम वहां पर एंजॉय करना। और हुआ ऐसे ही, सातवें दिन पे वो प्रलय आया, नाव आई, बैठे और वो रस्सी से वो मत्स्य भगवान भी आए और किनारे पर भी, क्योंकि फिर प्रलय जब आती है उसकी एक अवधि होती है और कुछ अवधि के बाद वापस उस पानी ने क्या होना होता है, नीचे बैठ जाना होता है, तो किनारा फिर मिल जाता है और किनारा उसको मिल जाता है और वहां से फिर उसको आदेश होता है कि तुम अब नया कल्प आरंभ होगा, तो तुम उस नए कल्प के क्या होंगे, मनु महाराज होंगे। तो इसलिए कहानी क्या है, मत्स्य अवतार और मनु महाराज। मनु महाराज तो एंड में बनते हैं, पहले है वो सत्यव्रत राजा। तो ये है कहानी कि किनारा उसको मिल जाता है और अगले कल्प में नई सृष्टि करने के लिए, जो कहते हैं ना पहला मानव, तो मनु क्या है, पहला मानव माना जाता है। मनु और शत्रुपा ने नई सृष्टि की रचना की। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे कि बाबा कहते हैं ये पूरा जो साइकिल है हमारा, इसमें दो बार प्रलय आती है। एक देखो, हम यहां से संगम युग से जो कहा भट्टी का लक्ष्य है, बाप समान बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो संपन्न और संपूर्ण बन के हम कहां जाएंगे, अपने परम धाम। डेफिनेटली सूक्ष्म वतन को क्रॉस करके हम जाएंगे परम धाम। और हम चूंकि यहां पे संपन्न हो गए हैं, संपूर्ण हो गए हैं, मतलब क्या है कि हम अपने 100% सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाएंगे। अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, हमें ज्ञान मिला है, जब तक ज्ञान नहीं था हम शुद्र जीवन जी रहे थे, मतलब हम कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन जी रहे थे। फिर जब हम ज्ञान में आए तो हमें पता चला कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, और इसलिए हमें क्या करना है, आत्माभिमानी स्थिति से जीवन जीना है, सोल कॉन्शियस बनकर जीना, ये मालूम है। परंतु अभी हम पुरुषार्थी हैं, हम 100% 24 घंटा में पूरा ही 24 घंटा हम सोल कॉन्शियस रहते हो ये जरूरी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी डोल रहे हैं, कभी हमारी स्थिति बॉडी कॉन्शियस वाली होती है और कभी हमारी स्थिति सोल कॉन्शियस, लेकिन पुरुषार्थ लगातार चल रहा है तो धीरे धीरे हमारा बॉडी कॉन्शियस वाले का परसेंटेज कम और सोल कॉन्शियस स्टेज का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। और जब हम संपन्न स्टेज पे पहुंचेंगे, मतलब हमारा बॉडी कॉन्शियस जीरो पे चला गया और सोल कॉन्शियस हमारा 100% पर आ गया, मतलब बैटरी फुल चार्ज है ना, संपन्न हो जाना माना बैटरी फुल चार्ज। तो जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो जैसे कहा कि वहां पे जाएंगे फिर हम और परम धाम से फिर नीचे उतरेंगे। तो यहां संगम पे तो हमने पुरुषार्थ किया अपनी स्टेज को सोल कॉन्शियस बनाने के लिए, लेकिन यहां का पुरुषार्थ बाबा कहते हैं सतयुग में क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, वहां हमें अटेंशन नहीं देना पड़ेगा, वहां पे नेचुरल हमारी एक स्टेज होगी और नेचुरल स्टेज होने के कारण बॉडी कॉन्शियस तो जीरो ही रहेगा हमारा, लेकिन वो धीरे धीरे भले नेचुरल होगा हमारा सोल कॉन्शियस, लेकिन एक बार हम ऊपर से नीचे उतरेंगे, शरीर में प्रवेश करेंगे और फिर वो शरीर की जो अवधि होगी उसको एंजॉय करके शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, इसमें धीरे धीरे हमारी बैटरी क्या होने वाली है, अर्थात जिस घड़ी हम सतयुग में उतरेंगे हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस 100% होगी, लेकिन पूरा ही त्रेता के एंड तक हम भल नेचुरल होंगे सोल कॉन्शियस, तो परसेंटेज क्या होगा, इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। और त्रेता के एंड में आकर हम जीरो पे आ जाएंगे और वहां से द्वापर युग आरंभ होगा और हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे। और चूंकि हमने अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज गवाई, अपनी पवित्रता गवाई, इसलिए इतने सुखों के हम अधिकारी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रकृति भी जो हमें इतना सब कुछ प्रचुर मात्रा में देती है वो किस आधार से देती है, पवित्रता के आधार से। चूंकि वहां पर हमारी पवित्रता कम हो जाती है, हम पतित मार्ग को अपना लेते हैं, अधिकारी नहीं रह गए इतने सारे सुखों को भोगने के, तो सेमी प्रलय होता है। तो सेमी प्रलय के समय क्या होता है कि हमने सोल कॉन्शियस स्टेज गवाई और बॉडी कॉन्शियस स्टेज स्टार्ट की, लेकिन वो जो स्टार्ट की थी कल्प का अंत होने जा रहा है, कलयुग का अंत पर हम पहुंच रहे हैं। तो यहां पर बॉडी कॉन्शियस कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, जब तक शुद्र जीवन में थे, हाई टेंपर हो गया ना उसका, वो तो फिर बाबा के बने, तो फिर उसका बॉडी कॉन्शियसनेस का परसेंटेज कम होना शुरू हुआ। तो अब जो ये जो हमारा देह बॉडी कॉन्शियस से वापस सोल कॉन्शियस में जाएंगे और पूरी पवित्रता आ जाएगी, लेकिन वो आत्मा की पवित्रता होगी, लेकिन सृष्टि तो पवित्र नहीं होगी ना, तो पुनः सृष्टि क्या करेगी कि इतनी पवित्र आत्माओं के लिए इतनी अपवित्र सृष्टि, जचती नहीं है बात। तो फिर से प्रलय आएगा कि जिस प्रलय में क्या होगा कि जितना भी अपवित्र है वो खत्म हो जाएगा और नई सृष्टि पावन पवित्र आ जाएगी। अब इस कहानी में क्या कहते हैं, सत्यव्रत राजा, कौन है ये सत्यव्रत राजा, हाँ? ब्रह्मा। सत्यव्रत राजा ब्रह्मा भी है और हम सब ब्राह्मण भी है, क्योंकि उस सत्ययुग में अकेला ब्रह्मा नहीं जाएगा, इसीलिए तो देखो ब्रह्मा तो कब से रेडी होके बैठा है, इंतजार कर रहा है ना हमारा, कि बाबा भी कई बार नहीं, शिव बाबा उनके साथ चिटचैट करते हैं, तो बाबा से चिटचैट में बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कब गेट खुलेंगे, तो बोले तैयार तो होने दो सबको, अकेले जाके क्या करोगे राजधानी में, है ना, राजधानी माना पूरी राजाई प्रजाई सब हो ना, अकेले जाके थोड़ी ना राजाई प्रजाई होती है। तो मतलब सत्यव्रत राजा मतलब वो इंसान, वो व्यक्ति, वो जीवात्मा, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वो राजा अपनी लौकिक जिम्मेवारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, रोल्स को, पद को, प्रतिष्ठा को, इन सब से उपराम होकर नदी के किनारे तप करने बैठा है। तो एक ऐसी आत्मा जिसने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे सत्य को हासिल करना है, अपने सत्य स्वरूप को भी और अपने सत्य पिता परमात्मा के स्वरूप को भी, अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर मुझे लेके चलना है। ऐसी जिसने एक निष्ठा बना ली है, एक व्रत ले लिया है, एक संकल्प ले लिया है, और उस संकल्प के साथ कौन सी नदी के किनारे बैठा है, वो कृतमाला नदी। तो सत्यव्रत तो हो गया एक आत्मा, है ना, जिसने ये संकल्प किया है। अब ये कृतमाला नदी क्या है, कृत माना कर्म, एक बाबा शब्द यूज करते, हम तो दीपावली बोलते दिवाली बोलते, बाबा शब्द यूज करते दीपमाला, है ना, तो ऐसे ही ये क्या हो गई, कृतमाला। तो दीप माला माना बाबा क्या कहते हैं, दीपों की माला। अब कृतमाला क्या हो गई, कर्मों की माला, है ना। क्योंकि देखो नदी शब्द क्यों यूज किया है, कि नदी माना ही जहां सतत जल का प्रवाह चलता ही रहता है, पानी बहता ही रहता है, ऐसे ही ये जीवन भी जो है इसमें कर्मों का प्रवाह सतत चलता ही रहता है। करूं 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 में ही लगे हुए हैं ना, कि बाबा हमेशा ये कहते हैं कि लोग कर्म संन्यास करते हैं, और ये उनका शब्द बोलना ही रॉन्ग है, क्योंकि आत्मा कर्म किए बिना रह ही नहीं सकती। तुम स्नान कर रहे हो, तुम पैदल चल रहे हो, वो भी तो क्या है, कर्म ही है। तो करूं 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 माना कर्म का एक बहाव इस जीवन में चल रहा है, और फिर जो कर्म हम करते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती है। न सिर्फ हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती है, भीतर में भी वही चलता रहता है। तो ये बात है पुरुषार्थ की, कि वो जो सत्यव्रत आत्मा है सभी बातों से उपराम होकर नदी के किनारे पर आया है, मतलब कि बाह्य मुखता को छोड़कर अंतर्मुखी बनकर बैठा है। और अंतर्मुखी बनकर जब बैठा है तो अंदर में जो हमारे कर्म किए हुए हैं वो सारे दिखते हैं ना, हमको नहीं दिखते हैं, चलता रहता है ना हमारे अंदर। और फिर उसमें कहा कि फिर उस नदी में उसने स्नान किया है, और स्नान किया है फिर तर्पण के लिए जल उठाया है अंजलि में, और उस समय वहां पर मछली आई है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अंतर्मुखी होने पर जीवन की घटनाएं सारी अंदर में आती है। तो जो मैं अंतर्मुखी बनी थी वास्तव में किस लिए, कि मैं अपने सत्य स्वरूप का दर्शन करूं, मैं अपने सत्य स्वरूप पर टिकूंगी तो ही नेक्स्ट स्टेप है कि मैं अपने सत्य पिता परमात्मा के स्वरूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकती हूँ। लेकिन होता क्या है, सत्य स्वरूप दिखने के बजाय ये कर्म जो हुए हैं वो सारे दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि आत्मा के पास तीन फैकल्टीज है, मन बुद्धि संस्कार। मन से आत्मा सोचती है, बुद्धि से आत्मा निर्णय करती है, कर्मेंद्रियों से कर्म करती है, और जो भी कर्म करती है हर कर्म की छाप आत्मा के ऊपर पड़ती है। और हम द्वापर से क्या बने हैं, बॉडी कॉन्शियस बने हैं, द्वापर से बॉडी कॉन्शियस बने हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार क्या है, बहुत गहरा है, और बेहद गहरा इसलिए चलते फिरते के अभ्यास में कब वो सोल कॉन्शियसनेस हमारी फिसल जाती है बॉडी कॉन्शियसनेस में पता ही नहीं चलता, और इसलिए ऐसे बैठकर तप करने की आवश्यकता पड़ती है, कि जो इतना कड़ा संस्कार बन के बैठा है उसको ढीला कैसे करें, कि ऐसे बैठकर टोटली, क्योंकि हर बात से उपराम, क्योंकि जब हम कार्य क्षेत्र में तो उससे संबंधित बातें चलती है, निभाना है वो, लेकिन अभी तो हम हर प्रकार से उपराम है, तो वहां अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज पर फोकस करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाता है। तब कहा कि कृतमाला नदी में स्नान किया और तर्पण के लिए अंजलि में जल भरा तो मछली आई। तो तर्पण करना माना क्या होता है, हाँ समर्पण, समर्पण माना फिर उसका लक्ष्य हाथी के समर्पित, लेकिन उसका लक्ष्य तर्पण का लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तर्पण करते हैं ना, तो उसका लक्ष्य क्या, किस उद्देश्य से तर्पण किया जाता है? क्योंकि तर्पण के समय किसके प्रति तर्पण कर रहे हैं उसके भी नाम का उल्लेख करते हैं, करते हैं ना ऐसे, ताकि वो जो हम तर्पण कर रहे हैं, माना दान दे रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, तो जिसके प्रति कर रहे हैं उसको प्राप्त हो, और उसको प्राप्त हो का मतलब उसको फिर जो हमने उनके प्रति किया है, दिया है, उससे उनको क्या होती है, तृप्ति का एहसास होता है। एक अतृप्ति में क्या होती है, अशांति होती है, बेचैनी होती है, बेसुकून होता है, चंचलता होती है, और इसीलिए दान किया जाता है, इसीलिए तर्पण किया जाता है कि हमारी तरफ से कुछ भी अगर कमी रह गई है और जिसके कारण उनमें अभी भी कुछ अतृप्ति है, तो वो हम उन्हें दे दें ताकि उनकी अतृप्ति तृप्ति में बदल जाए, और जब किसी की अतृप्ति तृप्ति में बदल जाएगी तो उसके अंदर से क्या निकलेगी, हमारे प्रति दुआ निकलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आएगी। तभी कहा कि जब हम सुंदर संकल्प करते, जो कहा ना कि एकांत में बैठकर क्या करना है, अपनी चेकिंग करना है, द्वापर से जो बॉडी कॉन्शियस में आकर के हमने कर्म किए हैं उन सब की छाप आत्मा के ऊपर अर्थात चित्त के ऊपर पड़ती गई है। जो चित्त पूनम के चांद की तरह उजला उजला था, द्वापर से वो कैसा होने लगा, मैला मैला, दिन प्रतिदिन उसका मैलापन बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि अगर अंदर में चाहे जितने भी विकर्म किए हुए हैं हमारे, चाहे वो द्वापर के, क्योंकि वहां से तो हमें याद भी नहीं रहता कई बार, लेकिन वर्तमान वाले तो याद होते हैं ना कुछ होता ही रहता है आपस में, कार्मिक अकाउंट हर एक के कहीं ना कहीं टक्कर करवाते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और मालूम होते हुए भी हमारे से चूंकि बॉडी कॉन्शियस में स्लिप हो जाते हैं ना, तो हम गलत कर ही बैठते हैं, और जब गलत कर बैठते हैं तो अंदर में क्या हो रहा है, वो बेचैनी क्रिएट कर रहे, क्योंकि चित्त की पहली लेयर क्या है, साफ सुथरी। जैसे शरीर में ब्लड, रेड आरबीसी जिसको बोलते हैं, जो शरीर को चाहिए अगर वही मिल रहा है शरीर को, तो आराम से गाड़ी चल रही है, शरीर आराम से चल रहा है, लेकिन कोई बैक्टीरिया कोई वायरस चला गया तो अंदर तूफान, अंदर प्रलय हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और प्रलय माने क्या होता है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक प्रोग्रामिंग दी हुई है कि फला फला चीज आए तो एक्सेप्ट करना है, और फला फला चीज आए तो ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, इसके साथ फाइटिंग शुरू कर दो, और वही तूफान चल रहा होता है, उसी के कारण बुखार आदि होता है। ऐसे ही चित्त को भी प्रोग्रामिंग मिली हुई है, चित्त को भी प्रोग्रामिंग मिली हुई। जब हम सोल कॉन्शियस से उतरे तो सोल के जो ओरिजिनल संस्कार वो उसमें इंस्टॉल हुए ना, फिर धरती पर आए, देवी देवता जीवन जिया, तो दैवी संस्कार उसमें इंस्टॉल हुए, वो वेल एक्सेप्टेड है, वो अलाउड है, लेकिन जब द्वापर से आए तो आसुरी संस्कार एक्सेप्टेड है, अलाउड है, तो फाइटिंग शुरू होगी या नहीं होगी? तो फाइटिंग शुरू हो गई है वहां पे, और वही हमको बेचैनी दिलाती है। और तभी कहा कि उस बेचैनी से बचने का एक उपाय होता है, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को रियलाइज। इसलिए देखो, दो जन के बीच में कुछ हो भी जाता है ना, तो कहते आप रियलाइज तो करो पहले, कई बार कहते हैं ठीक है ना गलती हो गई, लेकिन आप पहले दिल से स्वीकार करो, दिल से रियलाइज करो, क्योंकि जब दिल से रियलाइज करते तो जो यहाँ पे मैल डब्बा जो भी पड़ा वो क्या हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है, जैसे कि उसके ऊपर पोछा लग गया और वो साफ हो गया। तो ऐसे ही जब इसने जल तर्पण के भाव से लिया, मतलब भले करने जा रहा है ना, किसी की तृप्ति होगी, क्योंकि कुछ कर्म हमारे तरफ से कुछ रहा होगा तभी तो उधर अतृप्ति है। तो ये भाव आ जाना कि तर्पण करना है ताकि सामने वाले को तृप्ति मिल जाए, इसको सिंपल भाषा में कहें तो क्षमा मांग लेना है ताकि मेरे कारण से उसके मन में जो बेचैनी है वो उसकी शांत हो जाए और हमारे रिश्ते पहले जैसे फिर से ठीक हो जाए, हमारा जीवन सामान्य रूप से फिर से चले। तो इतना जब भाव आ जाता है ना, तो कहाँ वो पोछा लग जाता है उसके ऊपर, और जैसे ही उसके ऊपर पोछा लगेगा तो वो जो निर्मल चित्त था, पूर्णिमा के चांद की तरह चमकने वाला था, अभी पूरा नहीं पोछा हुआ है, अब थोड़ा सा रियलाइजेशन किया मतलब थोड़ा स्थान पोछा, तो वहां पे क्या हुआ, चमक नजर आई या नहीं आई, चमक वो दिव्यता, आत्मा के गुणों की दिव्यता, दैवी संस्कारों की दिव्यता उसमें झलकी ना हमको, तभी कहा कि जल लिया अंजलि में ऐसे तर्पण के लिए और वहां पे देखता है मछली, और मछली का विवरण क्या है, बहुत छोटी लेकिन गोल्डन, समझ में आ रहा है, चित्त में से वो थोड़ा सा आत्मा का प्योर प्रकाश बाहर आता है, साफ है ना जो हिस्सा, वो अनुभव में आता है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही आ गया होगा कुछ प्रकाश मेरे को, और हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऑलरेडी वहां इतना सारा मैला तो है ही, और अभी फिर से अगर ध्यान नहीं देंगे रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन कब आ गई, अर्थात पुनः हम अपने आप को मत से आए, वहां पे मत से आई, और कोई चीज क्यों नहीं आई, मत से ही क्यों आई, तो कहा मत से माना क्या होता है, एक अर्थ होता है कि जैसे मत्स्य क्या करती है पानी में ऐसे ऐसे चलती है, तो हमारा भी जीवन क्या होता है, डोलता है, किस में डोलता है, सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस में डोलता रहता है। अब हमें यह पक्का कर लेना है कि मुझे सोल कॉन्शियसनेस की तरफ फोकस करना है, इसको हाथ से छूटने नहीं देना है। तो जब ऐसा हम मन में कंफर्म कर लेंगे तो धीरे धीरे जो दिव्यता इतनी सी दिखी थी, रश्मि प्रकाश की इतनी सी दिखी थी, धीरे 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 क्या हो जाएगा, तभी कहा कि वो मछली हर बार क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, हमारी दिव्यता का प्रमाण बढ़ता जाता है। तभी कहा ना भट्टी माना, हम भट्टी करने से पहले जितनी दिव्यता थी, भट्टी करने के बाद उस दिव्यता में क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए, उस आत्मा की चमक बढ़नी चाहिए, कि जिस आत्मा की दिव्यता अपने आप इस चेहरे से फैलती रहे, इस कर्मों में वो आती रहे और नेचुरल रीति से सेवा होती रहे, न सिर्फ नेचुरल रीति से सेवा होती रहे, मेरी आत्मस्थिति जितनी ज्यादा दृढ़ होगी फिर उतना जल्दी बॉडी कॉन्शियस नहीं आएगा। ये बहुत वीक होने के कारण, क्योंकि जैसे आज का वरदान क्या था, सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कमजोरी आती ही तब है जब सत के संग से किनारा हो जाता है। तो देह अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, कमजोरी है ना, तो कब आती है? जब सत के संग से किनारा हो जाता है। तो इसको पकड़ के रखना है। तो भट्टी इसीलिए, चांस इसीलिए मिलता है कि जैसे भीड़ भड़ाके वाले इलाके में मैं साइकिलिंग सीखूं, तो चांसेस नहीं है कि मैं जल्दी सीख पाऊं। लेकिन एक नव सुखिए को क्या किया जाता है? खुला वाला मैदान दे दिया जाता है ताकि वहां पे एक्सीडेंट होने के नहीं, तो वो बैठा, अरे अरे वो गाड़ी ऐसे करके उठ ही जाएगा। लेकिन खाली रास्ता होगा तो ये उसको डर नहीं रहेगा और हिम्मत बांध के चलेगा। और वहां वो खाली स्थान में उसका हाथ बैठ जाने के बाद अब भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक्सीडेंट होने के इतने चांसेस नहीं है जो पहले अगर वहीं पे सिखा देंगे तो चांसेस है। तो भट्टियों का चांस हमें इसीलिए मिलता है कि हम अपने आत्माभिमानी स्थिति को यहाँ इतना पक्का कर ले कि वहां जहां चारों ओर क्या है, बॉडी कॉन्शियस वाले ही लोग रह रहे हैं, उनके साथ ही उठना बैठना कांटेक्ट हो रहा है, तो हम कहीं वापस एक्सीडेंट न कर बैठे। हाँ, तो इसलिए वहां पे ये चांस मिला है। तो फिर कहा कि वो मछली इस तरीके से बढ़ती जा रही है, मतलब वो सुरक्षा वाले स्थान में रखा जा रहा है जहां सुगमता से वो अपनी मूवमेंट कर सके, ऐसे स्थान पे। तो ये मधुबन जो घर मिला है आपको भट्टी के लिए, सब कुछ सुगमता है ना, सुखपूर्वक है ना सब कुछ। वहां तो कभी कभी सोचना पड़ेगा, सब्जी खत्म हो गई है, अभी किसको बोलूं, कोई है भी नहीं, चलो आज सिर्फ दाल रोटी खा लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो जो इजीनेस है उसमें, इजीनेस में थोड़ा कटआउट हो गया ना। लेकिन यहाँ पे हर प्रकार की सुगमता, हर प्रकार की इजीनेस है। तो दिव्यता के प्रमाण का बढ़ना इसी है। और जब ये बढ़ते बढ़ते, फिर कहां उसको बढ़ते बढ़ते, कहा कि बढ़ते जा रहा सागर, तो हमारी दिव्यता मतलब वो चित्त जो है, धीरे धीरे जो उसका काला वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, साफ होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और बाबा यही कहता है, विनाश किसके लिए रुका है? चूंकि तुम बच्चे संपूर्ण नहीं बने हो, संपन्न नहीं बने हो, इसलिए विनाश रुका हुआ है। प्रकृति तो बाबा कहते मेरे पास बार बार आके पूछ रही है, मैं कब खेल शुरू करूं, मैं कब खेल शुरू करूं। लेकिन बाबा इधर देखते हैं, मेरे बच्चे तो अभी तैयार ही नहीं हुए हैं। तब कहा कि जब उसकी दिव्यता बढ़ गई, तब वो फिर पुनः मत्स्य नारायण के रूप में प्रकट हुई। क्योंकि उस समय तक तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि है कौन, इतने जल्दी जल्दी इसका आकार क्या, क्यों बढ़ते जा रहा है। तो वो सत्यता उसको उद्घाटित किया, बताया कि क्या चीज है ये, और ये भी बताया कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है, अज्ञानता को मिटाने के लिए। ये संसार जो चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन से भर चुका है, तो वो जो प्रलय है वो सागर की तो होगी, लेकिन इस समंदर में भी जो स्काई है, पूरा स्पेस चारों तरफ क्या भरा पड़ा है, नेगेटिविटी। और इस स्काई के, इस स्पेस के पहले भी इधर अंदर जो स्काई है, स्पेस है, वहां पर क्या भरी पड़ी है, नेगेटिविटी, है ना। तो जब ये क्लीन होती जाए तो फिर कहा कि वो महाप्रलय, अर्थात हमारे अंदर से नेगेटिविटी का मतलब खेल चलेगा। जितनी जितनी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ेगी तो नेगेटिविटी का खात्मा होता जाएगा और वही प्रलय का स्वरूप होगा। और वही प्रलय का जब स्वरूप होगा तो जो भयंकर प्रलय में फिर ऐसा लगेगा कि हम डोल रहे हैं, लेकिन चूंकि अभ्यास किया हुआ है ना, लंबा अभ्यास, तो कहा जो नौका आएगी ना वो दृढ़ होगी बहुत। अर्थात ये नौका कोई और चीज नहीं है, हमारा दृढ़ आत्मज्ञान, हमारी दृढ़ आत्म अभिमानी स्थिति, कि कहा उसमें सवार हो जाना। और किसके साथ सवार होना? औषधियों के साथ, बीजों के साथ, सप्तऋषियों के साथ। क्या है ये सप्तऋषि? सप्तऋषि क्या है? हाँ, हमारे सातों गुण, वो है हमारी औषधियां। आज देखो हमारा इस वर्ष का थीम क्या है, दया और करुणा। भोजन पेट भरता है, दवाई हीलिंग करती है। तो शारीरिक हीलिंग तो दवाई करेगी, लेकिन मेंटल हीलिंग कौन करेगा? हमारे सद्गुण। तो जो औषधियां भरनी थी वो था सद्गुण। डेफिनेटली जब दिव्यता बढ़ेगी तो हमारे सद्गुण भी बढ़ते जाएंगे, और उस सद्गुणों की हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। और हीलिंग प्रॉपर्टी माना ही हम ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे। आज आप देखो, हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण के चित्र जो है वो अभी जीवंत नहीं हमारे सामने, सिर्फ तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन पल भर का दर्शन भी पल भर के लिए दुख भुला देता है भक्तों का। ऐसे ही अभी तो हम है ना, चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन रहे ना हम। तो हम अगर ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे, कोई हमारे सामने एक दयनीय स्थिति में होगा और हम उनको दृष्टि देंगे, उनके प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, उनके प्रति करुणा रखकर उन पर दृष्टि, कृपा दृष्टि बरसाएंगे, उनकी हीलिंग होगी या नहीं होगी? हीलिंग होगी ना उनकी। तभी तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अंत में पाठ चलना है। बच्चे, बच्चों की भी प्रत्यक्षता होनी है ना, इसीलिए तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते मेरे से ज्यादा लोग देवी देवताओं को ही पुकारते हैं क्योंकि हमने उनकी हीलिंग की है। लेकिन हीलिंग के लिए हमारी औषधियां क्या होगी? हमारे खुद के वो सद्गुण। तो दिव्यता जैसे जैसे बढ़ती है, तो ये जो सप्तऋषि क्या है, ऋषि मतलब क्या होता है? ऋषि का मतलब होता है जो ज्ञान अर्जित करता है, और अर्जित ज्ञान फिर दूसरों को भी प्रदान करता है। तो ज्ञानेंद्रियां क्या करती है? हम कहते हैं ना पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां है, तो ज्ञानेंद्रियां क्या करती है? ज्ञान का अर्जन करती। कौन से ज्ञान का? अपने अपने विषयों का। आंख क्या करती है? दृश्य का अर्जन करेगी। कान क्या करेगा? ध्वनि का। ऐसे हर इंद्रिय अपने से रिलेटेड जो विषय है उसका ज्ञान अर्जन करती है, और ये सारा किसको जाके पहुंचाती है? मन को। फिर मन जो उसके पास इतना डेटा आ गया, उसके अनुसार से संकल्प विकल्प चलाता है। विकल्प माने ऑप्शंस। और वो फिर संकल्प विकल्प रेडी करके सारा किसको देता है? बुद्धि को। अभी तुम डिसीजन लो भाई, मेरे पास तो अधिकार नहीं है ना डिसीजन लेने का। तो ये सब क्या हो गए? ज्ञान वाले ही हो गए ना, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां। फिर इसने ज्ञान इसको दिया, फिर इसने उसको दिया। समझ में आ रही बात? तो ये सातों ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो ये सप्तर्षि माना, जब ये सात इंद्रियां हमारे डिवाइन बन जाएगी तो ऋषि के काउंट में, सप्तर्षि के काउंट में आएगी ना। पहले क्या है, जैसे हम अज्ञान में हैं तो भी हम ज्ञान इन इंद्रियों से अर्जित कर रहे हैं, और ज्ञान में है तो भी इसका यूज करना है। लेकिन अब क्या कहते हैं बाबा, पहले हम गलत सलत देख लेते थे, गलत सलत सुन लेते थे, सब कुछ करते थे, और अभी अटेंशन रखना है कि अगर सुनना है तो बाबा के ही, महिमा को सुनना है, देखना है तो बाबा के ही कार्य को देखना है, बाबा के ही बच्चों को देखना है, बाबा के ही लीलाओं को देखना है। तो हर इंद्रिय को जो सांसारिक तरफ लगी हुई थी उसको कहाँ लगा दिया? अध्यात्म की तरफ। तो फिर वो क्या हो गई? डिवाइन। वैसे भी बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं, आते ही हर बच्चे को दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं, कहते हैं ना बाबा। तो जब ये सातों हमारे डिवाइन हो जाते हैं, यही हमारे सप्तर्षि हैं। और फिर कहा कि औषधियां हमारे सद्गुण और बीज कर्मों के, जो कर्म किए वो संस्कार तो हमेशा बीज रूप में रहेगा ही ना आत्मा में, वो कहीं जाएगा क्या? आज कई लोग पूछते जब उनको सृष्टि चक्र का लेसन कराओ ना, तो कहते हैं बहन जी इतना सुख वाला जीवन जी के वापस दुख वाले जीवन में आना ही है तो उससे अच्छा ऊपर ही बैठा रहूं ना। कहते नहीं कहता है, क्योंकि जिसके जीवन में बहुत दुख आए हुए थे तो उसको लगता है दोबारा फिर से, तो वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करता, क्यों आऊं फिर यहाँ पे, उससे अच्छा तो ऊपर ही बैठा रहूं। तो हम क्या कहते हैं उनको? भाई साहब बहन जी, आत्मा में कर्म करने का संस्कार है और वो कर्म करने का संस्कार आत्मा को ऊपर बैठने नहीं देता है, उसको खींच के लाता है। तो वो बीज ही संस्कार है हमारे और कुछ नहीं है। तो कहा कि उसके साथ, तो वो सप्तर्षि डिवाइन, तो उसने पूछा था कि जब प्रलय होगी तो चारों तरफ तो अंधेरा होगा, तो अंधेरा कौन सा? अज्ञान का ना। और ये डिवाइन बन गए और ज्ञानेन्द्रिय ही तो कह रहे ना, इनको ज्ञान अर्जित किया ऋषि माना, तो ज्ञान की दिव्यता, ज्ञान के प्रकाश में अंदर में जो कोलाहल चलता है ना, हम उसमें अडिग रह पाएंगे, अर्थात उसको साक्षी भाव से देख पाएंगे। और जब साक्षी भाव से देखेंगे भी, और साथ में कौन होगा? कहा नैया हिलेगी लेकिन किस तरफ जाना है मुझे मालूम ही नहीं है, तो कहा मैं भी प्रकट हो जाऊंगा। और वासुकी नाग को रस्सी बना के क्या करना? दोनों को जोड़ देना, नाव का एक किनारा पकड़ना और मेरे सिंग पे जोड़ देना, और मैं तो एक्सपर्ट हूं मत्स्य माना क्या, जिसको समंदर में तैरने की एक्सपर्टीज है ना, इसीलिए वो मत्स्य रूप में भगवान दिखाया है। तो मैं तो उसमें एक्सपर्ट हूं, तो मैं कितना ही भयंकर तूफान क्यों नहीं हुआ ना, मछुआरे कितने एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग तो थोड़ा भी देखते अरे इतनी लहर आ रही है, मछुआरा कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन वो तो एक्सपर्ट होता है ना, तो उसको कुछ भी डर नहीं लगता है। और ये तो कितना बड़ा एक्सपर्ट है ना, संसार सागर का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। तो कहता फिर इसमें आया कि भरोसा, संग जो आज का वरदान था, सत का संग पकड़े रखना है। और वासुकी नाग माना क्या? विचार और भावों के साथ हम उसके साथ जुड़े। कई बार नहीं भाई बहने कहते हैं कि योग में बैठते तो हैं पर क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है, अमृत वेले आते नींद आती। अरे भाई तुम विचार और भाव के साथ उसके साथ अपने आप को जोड़ो तो सही, तुम विचार और भाव के साथ जोड़ते ही नहीं हो तो फिर नींद आ जाती है। तो शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध विचारों, वही वासुकी नाग, मेरे साथ कनेक्शन बनाए रखना। तो ये अंदर जो जीवन में जो कर्म किए हैं उसके परिणाम स्वरूप जो घटनाओं का कोलाहल चल रहा है भीतर में, वो धीरे धीरे, वो प्रलय जो है धीरे धीरे क्या होगा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ, जब खिवैया साथ होता है तो पहले ही कहा है ना, बस भी देखो कई बार लोग जाते हैं ना अभी पंजाब में शिमला साइड तरफ, तो वहां क्या होता है, इस तरफ तो पहाड़ है और इस तरफ खाई होती है, और बस इतने किनारे से जाती है कि अगर कोई माना डरपोक व्यक्ति हो ना और किनारे पे बैठा हो, अरे करेगा बार हम लोग ऐसे गए थे शिमला पंजाब की तरफ, तो ड्राइवर के साइड में मुझे बिठा दिया। हर बार हर एक को चांस दे रहे थे, और मैं ऐसे थे, अरे 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 कर। भाई बोले भैया इसको पीछे भेजो, ये तो मेरे को डरा के मेरा बैलेंस खराब कर देगी। तो मतलब दृढ़ता होती है ना, तो जब दृढ़ता के साथ मेरे साथ आप अपने भावों और विचारों के साथ जब जुड़े रहोगे, तो ये अंदर का कोलाहल भी शांत होगा। और उसमें बताते कि जब किनारा कहाँ मिला उसको, तो बोला कि हिमालय पर लेकर गया। और हिमालय माना क्या? वाइट वाइट। और हिमालय माना क्या? पंच तत्वों की भूमि से थोड़ा ऊंचा, अर्थात सूक्ष्म वतन। हम सूक्ष्म वतन में जा सकेंगे ना, क्योंकि सूक्ष्म वतन भी तो पवित्र है ना। हम नहीं जा पाते, हम यहीं के यहीं रह जाते हैं। लेकिन उसको पहले वॉच करना होता है, खिवैया को मैंने पकड़ा है, किनारे लगाएगा। और उसमें ये भी आता है कि वो जो विहार कर रहे हैं ना, क्योंकि जब तक वो जल प्रलय शांत हो, वो भी एक लंबा पीरियड है, तो उसमें मैं तुम जो भी प्रश्न करोगे ना मेरे से, मैं उसका उत्तर दूंगा। और प्रश्न कौन से? दुनियावी नहीं, अध्यात्म वाले। तो ज्ञान चर्चा भी अंदर में चलती है, अर्थात जो इतना ज्ञान सुना है, वही तो हम कह रहे थे आपको कि जो सुना है, अब एकांत में बैठो। अगर जीवन की कोई घटना ऐसा कोई प्रश्न करती है, फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा, अभी अभी मैंने ज्ञान क्या सुना। अगर मुझे बाप समान नहीं बनना है तो अलग बात है, लेकिन अगर बाप समान बनना है तो इस ज्ञान को क्या करना पड़ेगा, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो खूब अंदर अंदर क्या करना है, बाबा के साथ वो ज्ञान चर्चा भी करना है। बाबा को पूछते जाना है, और बाबा ज्ञान के एक एक पॉइंट याद, जो सुना है वो याद आएगा ना। और इस तरीके से हम सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे, और सूक्ष्म वतन में बाबा ब्रह्मा जो फरिश्ता होके बैठे हैं, उनकी दृष्टि कृपा दृष्टि प्राप्त करेंगे कि कैसे उन्होंने भी अपनी स्थिति ऊंची बनाई है। और वो प्रेरणा लेके फिर हम फरिश्ता शरीर वहां छोड़ के परम धाम भी जा सकेंगे, और वहां परम धाम में और अपनी स्थिति को भरपूर करके एक भरपूर स्थिति से जब लौटेंगे हम, तो जो पहले वाली स्थिति थी अब उतना सताएगी क्या? सताएगी क्या? नहीं सताएगी। तो उसी में कहा कि वो ही सत्यव्रत राजा मनु महाराज बन जाता है। मनु माना क्या? वो मन, मन प्लस ऊ, मनु माना मन प्लस ऊ, वो मन जो अब सदा ही, ऊ माना ओम, ओम माना आत्मा, हम बोलते हैं ना ओम शांति, माना क्या? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो जो मन अभी ओम की तरफ मुड़ गया है, और कहते मनु और शत्रुपा दोनों, और शत्रुपा क्या है? बुद्धि। जो बुद्धि ओम अर्थात आत्मा की तरफ जुड़ गई है, अर्थात वो मन बुद्धि जब 100% सोल कॉन्शियस रहने लगे हैं, वही तो आएंगे ना नए कल्प में, नए युग में कौन आएगा? 100% सोल कॉन्शियस वाले आएंगे। तब कहा यही सत्यव्रत, क्योंकि प्रसन्न हुए भगवान उनसे और कहा कि तुम ही नई सृष्टि के आदि मनु बनेंगे, मनु और शत्रुपा और नई सृष्टि की रचना करेंगे। तो हमें भी क्या करना होगा, अपना मन और बुद्धि ओम अर्थात आत्मा की तरफ 100% इसका रुझान रहे, और 100% इधर रुझान हो तो उधर उसके साथ कनेक्ट होना तो बहुत इजी, और उधर कनेक्ट हो गया तो उसकी पावर इधर आना बहुत इजी और बहुत जल्दी हम बाप समान बन जाएंगे और जल्दी जल्दी मिल करके नई सृष्टि से पहले बाबा के साथ चलना है, परमधाम छू करके सतयुग में आएंगे। ओम शांति।